ओम शांति। आज जो टॉपिक हम सोच के आए थे बिल्कुल उसके ही बराबर भाई जी ने गीत बजाया। गीत की लाइनों में था, मन में किसके प्रति बदले की भावना न हो, सबके प्रति हो शुभ भावना। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बाबा इसके बारे में हर अगले दिन बात करते हैं, वो है क्रोध की। तो क्रोध मुक्त कैसे बने, तो शुरू एक कहानी से करते हैं। एक राजा था और एक बहुत बड़ा योद्धा था, चंगेज खान, सुना होगा सबने। चंगेज खान एक दिन निकलता है जंगलों में शिकार करने के लिए अपने मित्रों के साथ, जैसे हमेशा जाता था इस बार भी जाता है। और बहुत हंसी खुशी बहुत शिकार किए जाते हैं, और कुछ ही देर में एक पंछी उड़कर आता है और उसके हाथ पर बैठता है। पुराने जमाने में ये जो पंछी होते थे ये शिकारियों को बताते थे कि उनका शिकार कहाँ है। उड़के जाते थे और जहां कोई भी छोटा सा जानवर दिखेगा या कोई खरगोश दिखेगा तो उधर नीचे जाके बताते थे कि इधर एक शिकार है। तो प्रिय पंछी आके चंगेज खान के हाथ के ऊपर बैठ जाता है। तो फिर शाम होने लगती है और फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं। तो चंगेज खान दूसरा रूट ले लेता है और जो उनके मित्र होते हैं वो छोटा रूट लेके चले जाते हैं। अब ये चलते चलते, क्योंकि ये गर्मी का मौसम होता है तो बहुत थक जाता है ये राजा और उसको प्यास लगने लगती है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो सोचता है, हाँ मैं इस जगह से पहले भी गया था और यहाँ पर एक झरना है, लेकिन देखता है तो वह झरना सूख चुका है। अब उसको बहुत प्यास लगती है, आगे बढ़ता है और वो पंछी जो होता है वो उड़ता रहता है ऊपर। तो देखता है कि एक जगह से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। तो चंगेज खान क्या करता है, अपने बैग से चांदी का वो कप निकालता है और फिर वो बूंद बूंद जमा करने लगता है और बूंद बूंद जमा होते जाती है। और जैसे ही पूरा कप भर जाता है और वो अपने बस मुंह के पास लेने ही आता है कि वो पंछी उड़कर उस कप को गिरा देता है। तो चंगेज खान को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या। फिर दोबारा वो उस कप को उठाता है और पंछी ऊपर उड़ता रहता है और दोबारा उस उठाता है और भरने लगता है। इस बार आधा ही कप भरा होता है कि वो पानी को बस मुंह के पास लाना ही होता है कि फिर ये पंछी आके उसके हाथ के पास जोर से मारता है और कप गिर जाता है। बहुत गुस्सा आता है उसको, तीसरी बार कप उठाता है, तीसरी बार भी भरता है वो कप, क्योंकि बूंद बूंद गिर रही है तो सोचो कितना टाइम लग रहा है उसको। वो इतना प्यासा है, शाम हो चुकी है, उसके पास पानी नहीं है, इतनी दूर तक चल के आया है और फिर कप मुंह के पास लाने ही जाता है कि तीसरी बार वो कप को गिरा देता है पंछी। इस बार वो अपनी तलवार बाहर निकालता है, ये उसका प्रिय पंछी था जो उसके शिकार में उसकी मदद करता था हमेशा। वो निकालता है और कहता है कि तुम्हारी सजा यही है और उसको मार देता है और खून खून गिरने लग जाता है। इतने में क्या होता है, कप उड़कर दो पत्थरों के बीच में अटक जाता है। तो इसको इसको लगता है अब तो मैं पानी पी के ही रहूंगा, तो वो चढ़ने लगता है ऊपर और जहां से ये बूंद बूंद का झरना गिर रहा होता है तो चढ़ के वो देखता है कि एक ऊपर पूरा पूल है और उसमें एक जहरीला सा बड़ा सा सांप मरा हुआ है और सारे पूल को उसने जहरीला कर दिया है, तो वही पानी नीचे आ रहा है। तो उसको तुरंत एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, पंछी तो मुझे इशारा दे रहा था लेकिन मैं क्रोध में आकर उसको मैंने मार दिया। तो उसको बहुत बुरा लगता है। फिर वो जख्मी पंछी को उठाता है, अपने बैग में रखता है और वापस अपने घर लौटता है और सोचता है कि आज मैंने अपने जीवन का बहुत ही कड़वा अनुभव सीखा कि कभी भी क्रोध में आकर इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी एंगर मैनेजमेंट में बताते हैं इस्लाम में कि अपने क्रोध पर काबू करना सीखो। जो इंसान अपने क्रोध पर काबू करता है वही अच्छा होता है, वही सच्चा होता है, मुस्लिम होता है, ऐसा सिखाया जाता है। तो क्रोध के बारे में हम बात करेंगे आज। क्रोध एक ऐसी भावना है जो अंदर से इंसान को बहुत जलाती है, बहुत पीड़ा में लेके आती है, बहुत दुख में लेके आती है। जैसे बाबा भी कई मुरली में कहते हैं कि क्रोध जैसे कि भूत है, अगर किसी को क्रोध आ रहा है तो जैसे कि भूत आ रहा है। और बाबा ने मुरली में कहा था ना कि वाज धूप जलाओ और इन भूतों को भगाओ। तो क्रोध के बारे में जैसे कि हम पढ़ रहे थे, तो डेनमार्क करके एक देश है, वहां पर सबसे खुशहाल लोग रहते हैं क्योंकि वह देश बहुत संपन्न है, लेकिन पाया गया है कि वहां के व्यक्तियों को भी क्रोध आता है। तो क्रोध एक ऐसा विकार है जिसने किसी को नहीं छोड़ा, इतनी खुशी में वो लोग रहते हैं लेकिन फिर भी क्रोधित होते हैं कभी ना कभी। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर आप बच्चे क्रोध करते हो, किसी के ऊपर अगर हम क्रोध करते हैं तो वो व्यक्ति हमसे 6 महीने के लिए दूर चला जाता है। तो इतना क्रोध का असर होता है। साइंस में कहते हैं कि अगर आप 5 मिनट के लिए क्रोधित होते हो तो आपको नेक्स्ट 30 मिनट लगते हैं बैलेंस में आने के लिए। तो क्रोध का इतना इफेक्ट होता है हम पर। लेकिन कई कई साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि क्रोध बहुत स्वाभाविक है आना, क्रोध एक बहुत मैच्योर भावना है, क्रोध आना चाहिए वरना कैसे पता चलेगा लोगों को कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बाबा ने हमें ये नहीं बताया, बाबा ने उसको विकार में गिना है क्रोध को, और क्रोध मुक्त होने के लिए कहा है। और कई मुरलियां चली है और साकार मुरली में भी पॉइंट्स आते हैं कि कैसे हम क्रोध मुक्त बने। तो लोगों ने क्रोध पर जब बात की तो क्रोध के बारे में पहले थियोरीज बनी कि कौन सी थियोरीज है, कैसे हमको ये क्रोध आता है। तो एक लेखक ने लिखा है कि क्रोध एक प्रेशर कुकर के समान है। जैसे कि प्रेशर कुकर है, नीचे से आग जल रही है, प्रेशर कुकर में भोजन बनता है, ऊपर लिड होती है और वो भाप निकलती है उसमें से। तो जो आग है वो ट्रिगर्स है, ट्रिगर्स यानी कि कारण, जो चीज हमको क्रोधित करती है वो है आग। और फिर वो अंदर भोजन को आग से प्रेशर बिल्डअप होता है अंदर। और अगर आप इस क्रोध को मिटाना चाहते हो तो वो लिड को लूज कर दो, यानी कि वो लेखक कहता है कि आप वॉकिंग पे चले जाओ तो आपका क्रोध खत्म हो जाएगा और क्रोध शांत हो जाएगा, वो भाप निकल जाएगी तो क्रोध शांत हो जाएगा। और उसने कहा प्रेशर कुकर के अंदर भोजन को किस चीज से कंपेयर किया, भोजन वो है जो हमारे मन में पुरानी यादें हैं, पुराने विचार हैं जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किए, वो हमारे मन में बैठे हुए हैं, उन चीजों को, पुरानी चीजों को हम निकाल निकाल कर अपने को क्रोधित करते। कभी कभी कुछ होता नहीं है लेकिन पुरानी बातें याद आती है और हमको क्रोधित कर दिए। तो उसने कहा कि क्रोध एक प्रेशर कुकर के समान है, प्रेशर कुकर थियोरी कहते इसको। दूसरी एक थियोरी बोली गई है आइसबर्ग थियोरी। आइसबर्ग यानी कि बर्फ की जो चट्टान होती है ना, जो समुद्र के बीच होती है, 10% सिर्फ ऊपर दिखती है और 90% वो समुद्र के नीचे होती है। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो सिर्फ 10% बाहर दिखाता है अपने इमोशंस को, या तो चिल्लाएगा या चिड़चिड़ापन होगा उसमें, ऐसी कोई भावनाएं आएंगी उसमें, तो वो 10% दिखाता है और 90% वो अंदर ही अंदर अपने दबा के रखता है, अंदर ही अंदर जलता है क्रोध से वो, अंदर ही अंदर, क्योंकि उसको चिंता होती है, उसको डर होता है अगर मैं क्रोध करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, कभी कभी उसको शर्म आती है क्रोध करने को, कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सारी भावनाएं होती है, इसलिए इंसान क्रोध को पूरी तरह से बाहर नहीं निकालता और 10% क्रोध को बाहर दिखाता है। तो इसको कहते हैं आइसबर्ग थ्योरी। अब अगर हम क्रोध की मुक्ति की बात करें तो सबसे पहले जानना होगा कि आखिर क्रोध क्या है, क्रोध के प्रकार क्या है। कई जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्रोध को प्रकारों में बताया गया है। सबसे पहला कहते हैं कि लंबा समय का क्रोध, क्रॉनिक एंगर बोलते हैं उसको, ऐसा क्रोध जो लंबा समय से चला आ रहा है। एक व्यक्ति है जो लंबा समय से क्रोधित होता है, बार बार उसको क्रोध आता है, हर चीज पर क्रोध आता है। तो जब लंबा समय से वो क्रोधित होता है तो कहते हैं कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो लंबा समय से क्रोध करता है, बहुत संभावना है कि उसको डिप्रेशन हो जाएगा आगे जाके। तो ये होता है लंबा समय का क्रोध। तो अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमको किस प्रकार का क्रोध आता है। अगर हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमको ये प्रकार का क्रोध आता है तो हम उससे मुक्ति पा सकेंगे। सेकेंड है वॉलेटाइल क्रोध, जो विस्फोट होता है। जैसे कि कोई कोई व्यक्तियों को देखा होगा ना, बहुत जोर से चिल्लाएंगे, बहुत जोर से क्रोधित होंगे, चिल्लाएंगे और फिर शांत भी हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं वॉलेटाइल। बहुत जोर से चिल्लाएंगे, विस्फोट होता है, जैसे कि कोई वॉल्केनो फूटा, और बहुत क्रोधित होंगे और तुरंत थोड़ी देर के बाद शांत भी हो जाएंगे वो, तो वो विस्फोटित क्रोध। तीसरा है जजमेंटल, किसी के बारे में जज करना। जैसे कि कोई बॉस है, वो अपने जो जूनियर्स हैं उन पर क्रोध करते हैं और उनको ऐसा बताते हैं कि वो बहुत तुच्छ है, वो जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो भी वो कर रहे हैं सब कुछ गलत कर रहे हैं। तो इस प्रकार का क्रोध प्रकट करना, मतलब कुछ बेचारे कार्य कर रहे हैं लेकिन वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं, परंतु ये व्यक्ति क्रोधित इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है ये काम ठीक से नहीं कर रहे, तो ये होता है जैसे कि जजमेंटल क्रोध, जज करना दूसरों को और क्रोधित होना। चौथा प्रकार का क्रोध है बिहेवियर क्रोध, जो हमारा व्यवहार है। किसी किसी का व्यवहार ऐसा होता है कि उसको थोड़ा सा कुछ कारण हुआ नहीं कि क्रोध आता है, थोड़ा सा कुछ बोला नहीं कि गुस्सा, थोड़ा सा कुछ बोला नहीं कि चिड़चिड़ापन, ऐसे व्यक्ति के पास रहना भी अच्छा नहीं। तो ये ऐसे व्यक्ति होते जो व्यवहार में ही उनके इतना क्रोध भरा हुआ होता है। एक क्रोध होता है जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होता है, स्वयं ही स्वयं पर क्रोध करना। जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा था कि अमृत वेला, बाबा ने कहा उठो, अमृत वेला की याद बहुत अच्छी है, अगर याद करेंगे तो ये लंबा समय तक इसका इफेक्ट रहता है। अब कोई व्यक्ति अमृत वेला सपोज नहीं उठा, ठीक है, तो वो अपने आप पर क्रोधित कैसे करेगा? बहुत बहुत लोग करते हैं, आज अमृत वेला मिस हुआ ना, तो आज भोजन नहीं खाएंगे, आज ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, आज अपने आप को सजा देंगे, ऐसे कुछ अपने आप को सजा देना। और बहुत ऐसे भी फैनेटिक्स जैसे लोग होते हैं जो हाथ काट देते हैं या अपने को कुछ मारेंगे, तो ये है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड क्रोध। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे, तो हम अपने आप पर ही क्रोध करते हैं, तो इसको कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड क्रोध। एक क्रोध होता है जिसमें व्यंग बाण छोड़ना, क्रोधित हैं हम किसी से लेकिन डायरेक्ट उसको नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट उसको उसके साथ चिल्लाएंगे नहीं या मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन व्यंग बाण ऐसे कोई चीजें बोल देंगे, हाँ आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, हाँ तुम उनको बहुत खुश रखते हो, मतलब हमारे बोल में ही वो विकार दिखेगा, इसको बोलते व्यंग बाण मानना, तो टॉन्टिंग, हाँ, तो ऐसे ऐसे प्रकार का क्रोध। फिर एक होता है क्रोध तब होता है, एक उन्होंने ऐसे भी डिवाइड किया कंस्ट्रक्टिव क्रोध, जैसे कि वो कहते हैं कि क्रोध होना चाहिए, जैसे अगर कोई डिपार्टमेंट में या कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और कोई चीज बराबर नहीं हो रही है, अब हमको बताना है कि ये चीज बराबर नहीं हो रही है, तो क्या करते हैं, मोर्चा निकालते हैं, तो ये एक प्रकार का क्रोध है, ग्रुप्स बनाकर क्रोधित होना पूरे इंस्टीट्यूशन पर, तो ये एक क्रोध होता है। दूसरा है ओवरवेलमिंग क्रोध, मतलब पानी सिर के ऊपर चला गया, अभी अब बर्दाश्त के बाहर है। जैसे कि हम किसी डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं या हम किसी सेंटर पर रहते और हमारे जो बड़े हैं वो हमें हर बात पर टोक रहे होते हैं, लेकिन हम सहन करते हैं सुनते हैं क्योंकि हमारे बड़े हैं, कब तक सुनेंगे, पानी सिर के ऊपर चला गया तो फिर चिल्लाते हैं, फिर क्रोधित होते हैं, तो ये होता है पानी सिर के ऊपर जाने के बाद वाला क्रोध। फिर एक क्रोध होता है जिसको कहते हैं जानबूझकर क्रोध करना, जैसे कि क्रोध जो है वो प्लान करके आते हैं कि हाँ अभी ये चीज ऐसी नहीं हो रही है ना, तो अब मैं ऐसे क्रोध करके बताऊंगा, तो ये जैसे कि प्लानिंग होती है उनकी, डेलिबरेट एंगर इसको कहते हैं, जानबूझकर किसी पर क्रोधित होना ताकि सामने वाले को पता चले कि तुम रॉन्ग कर रहे हो, तो जानबूझकर क्रोध करना। फिर एक होता है पागलपन जैसा क्रोध, जिसको कहते हैं पैरानॉइड। अभी इसमें क्या करता है व्यक्ति, इसमें व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता है, अंदर ही अंदर उसको इतनी ईर्ष्या होती है, इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि वो किसी के प्रति अच्छा नहीं सोचता। जैसे कि अगर एक डिपार्टमेंट में कोई नया व्यक्ति आ जाए या सेंटर पे कोई एक नई बहन आ जाए, अब उसमें बहुत सारी कलाएं हैं, था और वो हमसे अच्छा है गुणों में भी और वो बहुत अच्छा सेवा कर रहा है। तो जो दूसरा व्यक्ति जो क्रोधित हो रहा है, जो ये पैरानॉइड टाइप वाला है, पागल वाला क्रोध है, इसको अंदर ही अंदर गुस्सा आएगा, अंदर ही अंदर ईर्ष्या होगी, लेकिन वो बताएगा नहीं। लेकिन ये एक प्रकार का क्रोध है। एक क्रोध है जो हम बाहर निकालते हैं, एक क्रोध है जो हम अंदर ही दबा कर रखते हैं और अपने आप को अंदर से जलाते हैं। तो ये एक क्रोध, तो पैरानॉइड टाइप ऑफ क्रोध। एक होता है स्नीकी एंगर, उसको कहते हैं डरपोक वाला। ये व्यक्ति गुस्सा आ रहा है लेकिन डरता है अपना गुस्सा दिखाने के लिए, तो इसको कहते हैं डरपोक वाला, तो डरता है वो। फिर है एक होता है हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब नेचर ही है उसकी, उसकी उसका व्यवहार ही ऐसा बन गया है, उसका नेचर ही ऐसा बन गया, कुछ कारण नहीं होगा फिर भी वो क्रोधित होगा। जैसे कि अभी बारिश में जाएंगे तो गीले होंगे ही ना, उस पर भी क्रोधित होगा वो, ऐसे कुछ उसकी हैबिट ही बन गई है क्रोध करने की, तो हैबिचुअल एंगर इसको कहते हैं। फिर एक होती है घृणा, हेट, इसको कहते हैं कठोर कठोर क्रोध, पक्का हो गया ये क्रोध, तो ये पक्का वाला एंगर कहते हैं। इसमें इंसान इतना क्रोधित है दूसरे व्यक्ति से कि वो दूसरे व्यक्ति को माफ ही नहीं कर सकता, माफ करना उसके लिए जैसे कि इम्पॉसिबल, क्षमा कर ही नहीं सकता। तो ये हो गया हेट, घृणा। तो कितने गिनाए हमने, एक हो गया क्रॉनिक वाला जो लंबे समय का क्रोध चल रहा है, एक हो गया वॉलेटाइल जो कि विस्फोटित होता है, आता है और तुरंत शांत हो जाता है, तीसरा हमने कहा जजमेंटल, किसी के ऊपर जज करना कि तुम ठीक नहीं हो और तुम तुच्छ हो, तुम जो भी करते हो बेकार ही करते हो, चौथा बिहेवियर क्रोध जो हमारे व्यवहार में ही आ गया है वो, फिर पांचवा जैसे कि टॉन्ट करना, व्यंग वाण करना, फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्वयं ही स्वयं पर क्रोध करना, फिर ओवरवेलमिंग जिसका मतलब है पानी सिर के ऊपर चला गया, अभी अब तो क्रोध करना ही पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्टिव यानी कि लोग सोचते हैं कि क्रोध करना चाहिए ताकि हमारे इंस्टीट्यूशन है जिधर हम काम करते हैं उनको पता चले कि ये रॉन्ग चल रहा है, फिर है पैरानॉइड जो पागल वाले जैसे लोग हैं जो अंदर से ईर्ष्या कर रहे, जल रहे हैं, इनसिक्योर है और क्रोध करते हैं, फिर है स्नीकी जिसको कहा डरपोक व्यक्ति जो अपना क्रोध को छिपाता है, डरता है दूसरों के सामने बताने से, फिर हैबिचुअल जिसकी हैबिट बन चुकी है क्रोध करना, और लास्ट में हमने कहा हेट, घृणा, एक कठोर क्रोध। तो इस प्रकार के क्रोध है। तो हम इस क्रोध को क्यों गिना रहे हैं, ये तो सब थ्योरी है, लेकिन जब हम क्रोध मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जब क्रोध मुक्त होने की बात कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि इनमें से हमको कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिनसे हमको क्रोध आता है। जब हम इसको जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमको आगे क्या करना है। इसीलिए प्रेशर कुकर थ्योरी, कि ट्रिगर क्या है हमारे, कारण क्या है मेरे क्रोध आने का, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जब क्रोध आता है तो क्रोध कुछ तलों पर आता है, जैसे कि संकल्पों के लेवल पर क्रोध आता है। सेकंड, क्रोध जब आता है तो इमोशंस के लेवल पर, भावनाओं के लेवल पर, तल पे आता है। तीसरा, संबंधों में, अगर किसी ने कुछ किया व्यक्तियों के लेवल पर, संबंध संपर्क के लेवल पर क्रोध आता है। फिर है चौथा, इमेजिनेशन, ख्यालों में क्रोध आ रहा है, ख्यालों में क्रोध आ रहा है। पांचवा, मेमोरीज, जो पास्ट की कुछ बातें हैं उसको सोच सोच के व्यक्ति क्रोधित होता है, पास्ट की बातों को सोचकर। और फिर सामाजिक, समाज में ऐसा कुछ हो रहा है उसको देखकर क्रोधित होना। और लास्ट है कि सेल्फ, स्वयं ही स्वयं पर क्रोध करना। तो अब हम चर्चा करेंगे कि क्रोध मुक्त कैसे बने, तो क्या करना चाहिए, पहले हम आपसे सुनेंगे। अगर क्रोध आ रहा है तो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि क्रोध आ रहा है उसके पहले ही रुक जाए, या हमको पता है हमको ये चीज में क्रोध आता है तो हमको क्या करना चाहिए। मुंह में पानी लेकर बैठने का, मामा ने बोला मुंह में मुलरा डाल दो, है ना, और सामान में रहना, और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। एक दिन बाबा ने मुरली में कहा था कि तुमको डेड साइलेंस में जाना है, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करना है। और क्या करेंगे आप लोग, क्या करते हो क्रोध आता है तो, कि क्रोध आता ही नहीं आज, हाँ कल आ जाना, पोस्टपोन कर देना क्रोध को कि आज तुम्हारा दिन नहीं है, कल थोड़ी देर के बाद क्रोध करूंगी, पोस्टपोन। और हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना। तो फिर जो कर रहा है उसको देख के हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और इच्छा फुलफिल नहीं होती है तो क्रोध आता है, तो इच्छा से मुक्त होने। और क्रोध आया तो मैं कितना नीचे गिर गया ये सोचना है, मेरी स्थिति कितनी खराब हो गई ये सोचना है। उसका चिंतन करना। क्रोध आता है तो मैं कितना नीचे गिर गया, ऐसे कहानी याद आ रही है। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है पार्थ और उसकी बहन होती है भक्ति, छोटे बच्चे हैं ये दोनों। और सुबह का समय है, जल्दी जल्दी पार्थ भाग के आता है और ब्रेकफास्ट करने बैठता है, टेबल पर दूध का ग्लास रखा होता है। और भक्ति छोटी बच्ची है, वो आती है उसकी बहन और उसका हाथ लग जाता है तो दूध इसके पूरे कपड़े पर गिर जाता है, ये तो यूनिफॉर्म में बैठा था अब पूरे यूनिफॉर्म खराब हो जाते हैं। तो वो बहुत क्रोधित होता है और उसको चिल्लाता है कि तुम देख नहीं सकती, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। और बेचारी उसको सॉरी बोलने ही वाली होती है कि वो गुस्से से अंदर जाता है दूसरे कपड़े चेंज करने के लिए। और जब अंदर जाता है तो देखता है कि कपड़े तो दूसरा यूनिफॉर्म तो इस्त्री नहीं है, सारे चुरमुड़े कपड़े हैं, तो अब मैं क्या करूं। और फिर इतनी देर में स्कूल बस का आने का टाइम हो रहा होता है और फिर बस वाला हॉर्न बजाता है और फिर वो देखता है कि मैंने तो अपना बैग भी पैक नहीं किया है अभी तक, तो उसको और क्रोध आता है, वो और गुस्सा होता है। फिर कैसे वैसे भी मामी जो होती है वो बस को जाने देती है, मम्मी उसको स्कूल छोड़ने जाती है। तो रास्ते में प्रार्थना करता है कि अभी मैं तो स्कूल के लिए लेट हो गया, अब टीचर मुझ पर क्रोधित नहीं होनी चाहिए, ऐसे सोच सोच के जाता है और याद करता है कि मेरी बहन भक्ति की वजह से ये सब हुआ है। और जब वो पहुंचता है तो टीचर का मूड ठीक नहीं होता है, तो टीचर उसको पनिशमेंट देती है और कहती है कि जाओ अभी एक माइल भाग के आओ। तो बेचारा भागने को जाता है और भागते भागते जल रहा होता है अंदर क्रोध से कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ, अगर उसने दूध नहीं गिराया होता तो ऐसा नहीं होता था। और फिर उसका दिन बड़ा खराब जाता है और फिर वो घर पहुंचता है और देखता है उसकी छोटी बहन ज्योग्राफी पढ़ रही होती है, तो वो कहती है क्या मद्रास इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो वो गुस्से में बोलता है कि ये ना मद्रास कैपिटल नहीं है तमिलनाडु का, चेन्नई है कैपिटल तमिलनाडु का, और उसकी बुक लेके फाड़ देता है और पूरी बुक फट गई। और वो बच्ची रोते रोते अपनी बुक उठाती है, इतने में मम्मी का आवाज आता है कि चलो बच्चों डिनर रेडी है। तो मम्मी कहती है आज पाव भाजी बनाइए, तो उसको और गुस्सा आता है कि मैंने बोला था पिज्जा बनाना और आपने पाव भाजी बनाई, तो उस पर भी क्रोधित। लेकिन मम्मी ऐसी आग दिखाती है कि चुपचाप बैठ के भोजन कर लेता है, फिर अपने बेडरूम में चला जाता है। और फिर इतनी कुछ पढ़ता रहता है तो थोड़ी देर में उसके पापा आते हैं, तो पापा कहते हैं क्या हुआ आज तुम्हारा दिन कैसा था। तो वो बड़े दुखी दिल से कहता है कि आज क्या हुआ। तो तब उसके पिता कहते हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक हुआ, क्या तुम्हारे हाथ से कभी कोई चीज नहीं गिरी, और चुरमुड़े कपड़े पहनने को तुमको इतनी शर्म आ गई, और क्या तुम अपना बैग रात को ही पैक नहीं कर सकते थे, और तुम मम्मी से भी जोर से बात करते हो, तुमको इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं है। तो और है ना, वैसे तो पिता कहता है कि जब आप क्रोधित होते हो तो जैसे इन्होंने कहा ना कि हमारी स्थिति नीचे गिर जाती है, तो कौन अंदर से जला। तो उसका पिता उसको समझाता है कि क्रोध जब हम करते हैं तो हमारी स्थिति कैसी गिर जाती है और हम अंदर ही अंदर इतना जलते हैं, दूसरे का तो कम नुकसान होता है अगर हम उस पर क्रोध कर रहे हैं, उसको भी दुखी करते हैं, लेकिन ज्यादा किसका नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है। और फिर उसका पिता वहां से निकल जाता है। तो यही बात है कि क्रोध में हमारी स्थिति कैसे नीचे गिर जाती है। तो हमने कुछ पॉइंट्स निकाले थे कि क्रोध मुक्त कैसे बने। तो सबसे पहले हमारी क्या आदत होती है कि हम जब दूसरों को देखते हैं, दूसरे कुछ अच्छी चीज नहीं कर रहे, या जैसे कि अभी बाबा की रिसेंटली मुरली चली थी लोक लाज पर, है ना, ब्राह्मणों की लोक लाज, अगर उस अनुसार नहीं चल रहा है कोई तो हमको गुस्सा आता है, दूसरे को देखकर हमको गुस्सा आता है। तो सबसे पहले नन ऑफ योर बिजनेस, ये हमारा धंधा ही नहीं है कि हम दूसरों को देखे और क्रोधित हो। जैसे कि अगर मुरली में आया, बाबा ने कहा लौकिक बर्थडे कैंसिल, ब्राह्मणों को लौकिक बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करनी है और उसी दिन कोई अपना लौकिक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो हमको गुस्सा आएगा। वो सेलिब्रेट कर रहा है लेकिन गुस्सा हमको आएगा कि देखो बाबा ने आज ही मुरली में बोला और ये देखो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, क्रोध से हमारी स्थिति डाउन होती है, तो नन ऑफ माई बिजनेस, ये मेरा नहीं काम है। और अगर कोई मिस्टेक कर भी रहा है तो बड़े निमित्त है उनको देखने के लिए, आप क्यों अपने हाथ में लॉ उठा रहे, आप क्यों क्रोधित हो रहे, तो ये मेरी सब्जेक्ट ही नहीं है, तो नन ऑफ माई बिजनेस। सेकेंड थिंग, ऐसे ये एक साइंटिफिक रिसर्च है कि जब व्यक्ति को ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है, जब व्यक्ति के ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो उसमें चिड़चिड़ापन आने लगता है। यानी कि जब हम बहुत भूखे होते हैं ना तो शायद हमको बहुत चिड़चिड़ापन आता है वो टाइम पर, तो एक भूख भी एक चीज है जिससे, मतलब ऐसा नहीं कि खाते रहो लेकिन अपने आप को फुल रखो, कि वो भी एक साइंटिफिक रिसर्च है जो इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है अगर भूखा पेट ज्यादा समय रहेंगे हम तो। थर्ड, नो डिजायर्स नो एक्सपेक्टेशन, किसी ने ऐसे कहा ना इच्छाएं, जब हम किसी से इच्छाएं रखते हैं कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसे करने चाहिए, इसने मेरे साथ वैसे करना चाहिए, अगर वो व्यक्ति वैसे नहीं कर रहा जैसे हम चाहते हैं तो फिर हमको क्रोध आता है। हम एक्सपेक्ट करते कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए और अगर वो वैसा नहीं होता तो हमको क्रोध आता है। तो उस टाइम पर अपने आप को संभालना चाहिए और समझाना चाहिए कि नहीं, ये मेरी इच्छाएं है जो मुझे क्रोधित कर रही है, तो अपनी इच्छाओं को कम कम करते करते समाप्त करना है। इच्छाएं ज्यादा उतना क्रोध भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे सब दुनिया बैठी नहीं है कि हमारी इच्छाओं को पूरी करें, है ना? क्यों वो हमारी इच्छाएं पूरी करने बैठे? नहीं। क्या हम उनकी तरह बिहेव करने को तैयार? नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो नो डिजायर्स नो एक्सपेक्टेशन। तीसरा, कहते जब क्रोध आता है ना तो कुछ मजाक की चीज करनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे कि एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जिसके सिर पर सिर्फ 8 बाल होते हैं और वो सलून में जाता है, हेयर सलून में, तो जो नाई होता है ना, जो बार्बर होता है जो बाल काटता है, उसको देख के इतना गुस्सा आता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बैठता है चेयर पर और उसके ऐसे 8 बाल ऐसे खड़े होते हैं, तो ये गुस्से से नाई कहता है कि काटू या गिनू ये गिनू या काटू? तो बूढ़ा व्यक्ति, उसको तो क्रोध आ रहा होता है लेकिन ये स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, इसको कलर कर दो तो उस हिसाब से जब क्रोध आ रहा है, जैसे कि हमारे साथ कैसे होता है, देखो हमारे साथ क्रोध कैसे आता है हमको, जब हम ओपीडी में बैठते हैं और पेशेंट आता है अपनी पेपर लेके आता है, नया पेपर बना के आता है, ठीक है, और पुराना फाइल सब छोड़ के आता है घर पे, और वो हमारे से एक्सपेक्ट करता है कि हमको सब मालूम होना चाहिए कि फाइल वाइल सब भूल के ऐसा आता है जैसे नया आया है, उसका ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है यहाँ से, लेकिन वो हमसे ऐसा सोचता है कि डॉक्टर को पता है कि मुझे क्या दवा चालू है, मुझे क्या है, सब कुछ पता है। अब वो 1 महीने के बाद आ रहा है, अब हम तो 50 पेशेंट देख रहे दिन में, हमको क्या पता? तो वो ऐसी इच्छाएं रख के ऐसे अपना पेपर रखता है सामने जैसे हमको सब पता होना चाहिए। दूसरा कब होता है, जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट एडमिट होते हैं, ठीक है, और उनको लिख के देते हैं ना 7 दिन की दवा, 15 दिन की दवा, तो उनको लगता है 15 दिन में दवा बंद करने का, जबकि सब समझाया जाता है कि अब ये दवा चलेगी आपकी लंबा समय, हमेशा चलेगी, उनको हम बताते कि आपको क्या परहेज करना है, सब बताते, और वो आते हैं 300 और 400 शुगर लेकर। फिर हम कहते हैं कि ऐसे कैसे इतना बढ़ गया, आप परहेज नहीं कर रहे, अब दवा नहीं ले रहे? नहीं, आपने तो 15 दिन की लिखी थी ना, तो बंद कर दी 15 दिन के बाद डॉक्टर, और आ रहे फिर उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद। तो हम उनको ऐसे देखते हैं कि जैसे कि हमारा कसूर, इनका कोई कसूर ही नहीं। इस तरह से कभी कभार पेशेंट आते, तो उस टाइम पर क्रोधित ना होके हमको भी कुछ ना कुछ ह्यूमर करना पड़ेगा। जैसे बहुत बार पेशेंट आते हैं, उनको सारी रिपोर्ट्स करने कहते हैं ना, तो अभी 2000 का बिल हो जाता है, रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट किया होगा 2000-3000 कुछ होता है, और जो पेशेंट शाम को 4 बजे रिपोर्ट लेके आता है और हम कहते हैं अरे वाह रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है, तो पेशेंट कहता है अच्छा, तो दुखी हो जाते हैं वो, मतलब उनको लगता है कि मतलब हमने 2000-2500 डाले तो कुछ तो आना चाहिए था, मतलब ऐसे भी होते पेशेंट्स, तो उनको लगता है अरे सब ठीक है। तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं आप निराश नहीं हो, हम कुछ तो लिख के भेजेंगे आपको यहाँ से। तो इस तरह से कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर लाना है हमको, कुछ ऐसा चल रहा है जैसे बाबा ने कहा ना मुलरा डाल दो मुंह में या शांत हो जाओ उस समय या स्माइल करो, उसके सामने नहीं करना। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति क्रोधित होता है तो एक होता है रिटेलिएटरी एंगर, जिसमें सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो हम भी गुस्से में रिप्लाई करते हैं, तो वो नहीं करके शांत या स्माइल या कुछ ना कुछ ह्यूमर, ताकि उसको भी उसका क्रोध शांत कर दे और हम अपना भी क्रोध शांत कर दे। तो सेंस ऑफ ह्यूमर। फिर है अगर कुछ हो गया तो हमको गुस्सा आता है, लेकिन हमारा अप्रोच होना चाहिए सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। इसका मतलब क्या कि अगर कुछ हो गया तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है, है ना? जैसे कि दादी जी का बड़ी दादी जी अभी इतना बड़ा यज्ञ संभालते हुए कुछ ना कुछ गलती होती थी भाइयों से, तो दादी कभी क्रोधित नहीं करते थे, बहुत बड़ी बड़ी गलती हो जाती थी तो दादी क्या करते थे, भाइयों से अनुभव सुना है, दादी बुलाते थे, दृष्टि देते थे और ठीक हो कहते थे और टोली देते थे, और कभी कभार दादी कहते थे जाओ और अभी योग करो। तो देखो वहां पर दादी को क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन दादी दृष्टि दे रहे हैं, दादी को समझ में आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती को समझ चुका है तो मैं क्यों क्रोध करूं उस पर। तो क्रोध ना करके एक सोल्यूशन है उनके पास। जैसे कि बाबा, एक बार एक बहन का अनुभव है, कहीं सुना था, तो एक बार हलवा बना था, ठीक है, तो हलवा बहुत अच्छा बना उस दिन, तो हलवा सब लोगों ने खाया, कुछ कुछ बहनों ने हलवा वापस मांगा, तो जो बहन हलवा बांट रही थी वो बाबा के पास आई और उसने बाबा से कहा कि बाबा आज हलवा बहुत अच्छा बना है और कोई कोई बहनें दोबारा मांग रही है हलवा। तो बाबा ने कहा ठीक है तुम अपने हिस्से का मत खाओ और उनको दे दो। तो वो बोली ठीक है और उसने जाके दे दिया। अब शाम की क्लास में कैसी कचेरी लगती थी ना, तो देखो बाबा का सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच क्या है। तो बाबा क्या करते थे, इनडायरेक्टली मम्मा को कहते थे। तो बाबा ने कहा मम्मा आज हलवा बना था और आज हलवा बहुत अच्छा बना था, मम्मा बाबा को हलवा बहुत अच्छा बना, बाबा चाहता था कि दोबारा ले, लेकिन बाबा ने मम्मा लिया नहीं तो दूसरों को नहीं मिलता था ना। अब देखो बाबा ने इनडायरेक्टली शिक्षा दे दी उनको, बाबा ने उनको बुला के चिल्लाया नहीं कि नहीं खाना चाहिए, दूसरों को नहीं मिलेगा, दूसरे के हिस्से का खा लिया, कि कितना प्यार से मम्मा को इनडायरेक्टली क्लास में रात की कह देना कि बच्चों को इशारा मिल जाए। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए जब हमको क्रोध आ रहा है। तो ये एक हम अपने क्षेत्र में सोचे कि अगर मुझे इस चीज पर क्रोध आता है तो क्रोध ना कर मैं उसका क्या सोल्यूशन, क्या निवारण है उसका, वो करूं। फिर है हमारी चॉइस है एंगर की, है ना, गुस्सा होने की हमारी चॉइस है। अगर सामने वाला हम पर क्रोधित हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी क्रोधित हो। अगर वो श्रीमत का उल्लंघन कर रहा है तो हम भी श्रीमत का उल्लंघन क्यों करें। जैसे कि बुद्धा था, बुद्धा का जीवन में कहानी बताते हैं, वो एक गांव से जा रहा था तो उस गांव के लोग उसको बहुत चिल्लाने लगे, बहुत गाली देने लगे, बहुत कोसने लगे। तो बुद्धा कहता है कि अच्छा अभी आप लोगों का हो गया तो मैं जाऊं। तो वो लोग और चिल्लाते उसको और गाली देते उसको, आप तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, गालियां देते। तो वो फिर से कहता है कि मैं लेट हो रहा हूं, तुम लोगों का हो गया तो मैं जाऊं आगे, मुझे दूसरे गांव जाना है अभी। तो वो लोग वापस चिल्लाते फिर भी वो ऐसे ही कहता है। तो गांव वाले कहते हैं कि ना तुम कैसे व्यक्ति हो, हम तुमको इतना चिल्ला रहे इतनी गालियां दे रहे तुमको गुस्सा नहीं आ रहा। तो बुद्धा कहता है कि इस गांव से पहले मैं दूसरे गांव में गया था, उस गांव के लोग मेरे लिए मिठाई के डब्बे लाए थे लेकिन मैं भरपेट खाना खा के आया था। तो मैंने उनसे कह दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। तो आपको क्या लगता है उन्होंने अपने मिठाई के डब्बों का क्या किया होगा, तो अपने घर लेके गएंगे अपने बच्चों को बांटा होगा। तो उसी प्रकार भले आप कुछ भी मुझे कह रहे हो अभी ये मेरी चॉइस है कि मैं गुस्सा करूंगा या नहीं करूंगा। तो ये हमारी चॉइस होती है, सामने वाला हमको आके क्रोध करे या ऐसा कोई चीज हमारे सामने हो रही है तो सारी चीज हमारे हाथ में कि हमको क्रोध आए या ना आए। लेकिन हम क्या कहते हैं कि उसकी वजह से मुझे क्रोध आया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फिर रिश्तों में जब क्रोध आता है कि किसी संबंध संपर्क या कोई व्यक्ति ने कुछ कर दिया तो क्रोधित होते हैं हम उस पर। तो जैसे उसमें जैसे साइलेंस की बात की, साइलेंस। एक जगह मैंने पढ़ा था कि दो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं, वो जो अपने चेहरे पर, जो अपने लिप्स पर मुस्कुराहट रखते हैं, और दूसरे वो जो साइलेंस रहते हैं। तो साइलेंस एक ऐसा चाबी है हमारे पास कि जिससे हम सब कुछ जीत सकते हैं। जैसे अगर कोई क्रोध कर रहा भी है तो हम शांत हो जाए, इसलिए रिश्तों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार जैसे कि दरार आ गई तो वो हमेशा रहेगी, जैसे कांच की तरह है ना रिश्ते। जैसे अगर टूट गया बीच में से, हम उसको ज्वाइन भी करेंगे तो भी वो दरार तो दिखती है जो हुआ। एक बार एक बच्चा होता है, उसको बहुत क्रोध आता है, तो उसका पिता कहता है उसको कि उसको इतने सारे कीले देता है और कहता है कि जाओ और जितनी बार तुमको क्रोध आएगा ना, तो जाकर वो जो बाउंड्री होती है ना फेंस, उस पर जाके कीला ठोकना उसके ऊपर जाके जितनी बार तुमको क्रोध आएगा। तो पहले दिन पर उसको 37 टाइम्स क्रोध आता है, तो 37 कीले ठोकता है फिर ऐसे ऐसे करके उसको लगता है कीले ठोकने से तो अच्छा मैं अपना क्रोध को कंट्रोल करूं, तो वो आहिस्ते आहिस्ते क्रोध को कंट्रोल करता है। और फिर ऐसा दिन आता है जब उसको क्रोध ही नहीं आता, तो फिर उसका पिता कहता है कि अब बहुत अच्छा, तुम तो अपने क्रोध पे जीत पा लिया, अब जाना और रोज एक कीला जो तुमने ठोका है उसको निकालना। तो फिर वो रोज जाता है और कीले को निकालता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि सारे कीले उसने निकाल दिए। तो वो आता है अपने पिता के पास और कहता है कि मैंने सारे कीले निकाल दिए। तो पिता कहते उसका हाथ पकड़ के उसको वहां लेके जाता है और कहता है शाबाश, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया कि तुमने सारे कीले निकाल दिए, लेकिन तुम कुछ देख रहे हो, ये कीले जो तुमने निकाले तो होल हो गया ना, छेद, ये छेद तुम कभी नहीं भर पाओगे, है ना। तो हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, हम क्रोध तो कर देते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं कितने लोगों पर, लेकिन जो हम उन पर छोड़ देते हैं चीजें, वो जो जख्म छोड़ देते हैं उन पर गहरे गहरे, वो हम कभी नहीं भर पाएंगे। फिर चाहे जैसे, इसलिए तो बाबा ने देखो साकार मुरली में आया ना कि अगर आप एक बार किसी व्यक्ति से क्रोध करते हो तो 6 महीना वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है। फिर चाहे आपके साथ रहेगा वो, लेकिन अंदर से वो दूर है आपसे। तो रिलेशनशिप्स में शांति। दूसरा एक होता है कि जो एक डायरी रखना कि हमको कौन कौन सी चीजों पर क्रोध आता है, ऐसी कौन कौन से कारण है जिससे मुझे क्रोध आता है। सबके क्रोध आने का कारण कुछ ना कुछ और होगा, किसी को दूसरे को देख के आ रहा है, किसी को कोई झूठ बोल रहा है तो क्रोध आ रहा है, किसी को अगर अन्याय हो रहा है तो क्रोध आ रहा है, कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्रोध आ रहा है ना। तो हमने कोई एक्सपेक्टेशन रखी है किसी से तो क्रोध आ रहा है। तो एक डायरी रखना जिसमें हम लिखे कि मुझे क्रोध आने के क्या क्या कारण है। नेक्स्ट, बीज रूप स्थिति का अभ्यास। जितना हम बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे, अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, उतना हम इन सब विकारों से दूर होते जाते, उतना ये कट उतरती जाती है ना हमसे, हम पर से। तो बीज रूप स्थिति का जितना अभ्यास, मौन, अंतर्मुखता, इन सब चीजों का बहुत गहरा अभ्यास। और नेक्स्ट है, जैसे कि कोई कोई व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो यही चीज करते हैं, तो एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, कोई कोई चीजों को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हम हर चीज पर क्रोधित नहीं हो सकते, है ना, हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये है ही ऐसे, अभी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि देखो, हम कितनी बार शाम को योग कर रहे होते हैं, और या तो हम मॉर्निंग क्लास में मुरली सुन रहे होते हैं, और बाहर जोर से बारिश होती है, बारिश की आवाज कितनी जोर से होती है, लेकिन हम में से कोई उठ के गुस्से में जाता नहीं और बारिश से लड़ता नहीं वहां पर। क्यों नहीं लड़ते हम? क्योंकि हमने बारिश की आवाज को स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये प्रकृति है, ये स्वीकार की हुई आवाज है। लेकिन अगर हम में से कोई योग में बैठा है और किसी का मोबाइल बजता है तो हमको क्या होता है? गुस्सा आता है। कितने भाइयों को देखा है हमने, उठ के बाहर निकलते है कि नहीं, क्रोध आता है उन पर। माताओं को कभी कभार बंद करने नहीं आता अपना मोबाइल, वो इतनी जोर जोर से बजता है, बाहर जाने तक चलता है, तो कितना सबको डिस्टर्ब होता है। लेकिन बारिश की आवाज इतनी जोर से आएगी कि म्यूजिक जो चल रहा है वो भी हमारी कानों तक नहीं पहुंच रहा होता है, लेकिन तब भी हमको चलता है क्योंकि हमने स्वीकार किया। ऐसे ही जैसे देखो, अगर हम गाड़ी से जा रहे होते और गाय सामने आती है, ठीक है, गाय क्रॉस कर रही होती है, तो हम अपनी गाड़ी रोक देते हैं ना, पहले गाय जाएंगी फिर हम जाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति भूल से बीच में आ जाए तो फिर हमारी आंखें बड़ी बड़ी, हम क्रोध करने लगते हैं उन पर। तो कई चीजों को हमने स्वीकार किया, कई चीजों को हमने स्वीकार नहीं किया, तो स्वीकार करना सीखना है, तब हमारा ये क्रोध शांत होते जाएगा। तो फिर दूसरा है स्वयं पर क्रोध करना। जब खुद ही गुस्सा आ रहा है, क्रोध खुद के ऊपर, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर खुद ही खुद पर क्रोध आ रहा है तो कोई घम से गलती हो गई, अब हमको पश्चाताप हो रहा है, क्रोध आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? बदलने की कोशिश। एक होता है कंपैशन, इंग्लिश में वर्ड है कंपैशन, उसका मतलब है दया, स्वयं पर दया करो। कई बार बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे पश्चाताप में इतना समय बिता देते हैं, रोते हैं, अपने को ही इतना दुखी करते हैं। रियलाइजेशन हो जाना कि गलती हुई, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन उसी के ऊपर विचार करते रहना और रोना और फिर बहुत रिपेंट करना, ये बाबा ने नहीं कहा हमको। तो दया, अपने ऊपर दया, अपने को माफ करना सीखो। कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो चुकी है जिसके लिए हमने अभी तक अपने आप को माफ नहीं किया, तो अंदर एक क्रोध है हमारे कि हमने अपने आप को माफ नहीं किया उस चीज के लिए। दूसरा, ऐसे कई योगा प्राणायाम बताते हैं कि जिससे क्रोध शांत होता है, तो ये हट योगा है जैसे कि जिससे भी योग शांत क्रोध शांत होता है। नेक्स्ट है, अगर क्रोध आ रहा है तो कहते हैं कि वॉकिंग पे निकल जाओ। जब हम वॉकिंग पे निकल जाते हैं ना, तो जैसे कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा ना पोस्टपोन करो, आज नहीं कल क्रोध करेंगे, तो तब तक मन को टाइम मिल जाता है, तो वॉकिंग पे निकल जाओ। जब हम वॉकिंग करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जॉगिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इसको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, उससे हमारा मूड ही चेंज हो जाता है। और पता नहीं हम कुछ क्लासेस सुनते हुए निकले और कुछ ऐसी पॉइंट आ जाए जिससे हमारा क्रोध ही शांत हो जाए, तो वॉकिंग पर भी निकल सकते। और जैसे कि कहते हैं कि क्रोध का त्याग करना, जैसे बाबा ने त्याग पर कितनी मुरली चलाई ना अभी, लेकिन क्रोध का भी त्याग कर दो। क्यों क्रोध का त्याग करो? क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो पूरे वातावरण को दूषित करता है, वो कोई पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं जा रही, सारी ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जा रही है वातावरण को, और हम इस विश्व के आधार मुहूर्त है ना, हम ही पूर्वज है। और अगर हमारी जैसी स्थिति वैसी संसार की स्थिति, अगर मैं इतना क्रोध करूं तो मैं क्या वाइब्रेशन फैला रही हूं, फिर क्या मैं भगवान की मददगार हूं? नहीं। तो इसीलिए अपने आप को पूर्वज समझना, आधार मुहूर्त समझना, और इस क्रोध को त्याग देना, रिनंसिएट, क्रोध को छोड़ देना, त्याग देना क्रोध को। फिर और है जैसे कि भोजन, जितना जैसा अन्न वैसा मन, तो जितना प्योर फूड उतना हमारा माइंड भी प्योर। तो जब हम भोजन भी करें तो क्रोध में आ रहे तो उस टाइम थोड़ी देर रुक ही जाना, भोजन नहीं करना, बाद में करना भोजन, क्योंकि अगर क्रोध में आके वही वाइब्रेशंस क्रोध की अगर हमने हमारे भोजन में डाले तो वो इतना हिंसक हो जाएगा ना कि वही सारा हमारे अंदर जाएगा, फिर वही हिंसक वृत्ति से हम भोजन स्वीकार करेंगे तो वही मेरा मन बनेगा, फिर वही साइकिल रिपीट होगी। तो इसीलिए क्रोध से भी, इसलिए भोजन भी प्योर, भोजन भी अन्न की शुद्धि। तो कितने गए हो गए? बहुत सारे हो गए। तो पहले जैसे कि नन ऑफ योर बिजनेस, ये हमारा धंधा ही नहीं है। फिर भोजन की शुद्धि, फिर जैसे कि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, वो कहा एक पॉइंट। फिर हाँ, जैसे कि ऐसा एक साइंटिफिक रिसर्च है कि खाली पेट रहते हो आप, जब ब्रेन को ग्लूकोज नहीं पहुंचता तो आप में चिड़चिड़ापन आता है बहुत समय, लंबा समय तक अगर हम नहीं है खाना, कुछ नहीं खाया हमने, तो एक रिसर्च है। फिर नो एक्सपेक्टेशन, नो डिजायर्स किसी से भी। फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, किसी का कुछ हो गया तो उसका निवारण क्या है, ना कि क्रोधित होना। फिर सेंस ऑफ ह्यूमर, क्रोध आ रहा है, कुछ ऐसी हंसी की बात सोचो और अपने क्रोध को शांत कर दो। फिर बीज रूप स्थिति का अभ्यास, जितना बीज रूप स्थिति का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास, उतना हम जल्दी क्रोध से मुक्त होंगे। फिर शांत हो जाना तुरंत, फिर क्रोध का त्याग, डायरी रखना कि हमारे कौन से ट्रिगर है, किस किस चीज पर मुझे क्रोध आ रहा है। फिर स्वीकार करना, कोई कोई चीज को एक्सेप्ट करना कि ये ऐसा ही है, ये ऐसी चीज है, इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, है ना। जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, जिधर हम सेवा करने आए हैं, कई व्यक्तियों के स्वभाव हमको पसंद नहीं आते है ना, लेकिन उधर हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनके संस्कार ऐसे है, वो भी राइट है, हम भी राइट है अपनी जगह पर, और क्रोधित ना होना है। और जैसे कि दूसरा, जैसे योगा प्राणायाम है, या वॉकिंग पर चले जाना, या खुद से बात करना। एक और है कि हम हमारे पूरे दिन में मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, शाम का योग करते हैं, लेकिन कुछ समय निकाल के खुद से बात करना, भले वो 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, लेकिन जब हम खुद से पॉजिटिव बात करते हैं तो उसका भी मन पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो ये जैसे कि बहुत सारे पॉइंट हैं क्रोध मुक्त होने के। एक और टेक्निक होती है जिसको कहते हैं एपॉक्स टेक्निक। ए फॉर अवेयरनेस, पी फॉर पॉज, ओ फॉर ऑप्शंस, एक्स फॉर एक्सप्रेस। ए फॉर अवेयरनेस यानी कि अवेयरनेस आ जाना कि हाँ मुझे क्रोध आ गया, अभी ये मेरा जागृति कि ये क्रोध आया मुझे, अवेयर हो गए हम। पी फॉर पॉज, रुक जाओ, कहते हैं कि 10 काउंट करो और सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करो, जो चीज चल रही है ना आप सिचुएशन के कंट्रोल में मत आ जाओ, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करो। ओ मतलब ऑप्शंस, अभी जो हमने इतने सारे ये ऑप्शंस गिनाए ना, ये हमारे ऑप्शंस है कि कौन सा ऑप्शन मैं यूज करूं अभी अपने क्रोध पर जीतने के लिए, है ना, किस तरह से अभी मैं रिस्पॉन्ड करूं, ये सोचना। और ई एक्सप्रेस, तो वहां पर कि मैं अभी अपना क्रोध किस प्रकार जीतूंगी, किस प्रकार एक्सप्रेस करूंगी। तो कोई कोई साइकोथेरेपिस्ट है ना, वो ये एपॉक्स टेक्निक सिखाते हैं लोगों को जिनको बहुत क्रोध आता है। ऐसे भी कई साइकोथेरेपिस्ट है जिनको बहुत क्रोध आता है, जैसे हम बचपन में एक बहन थी हमारे साथ, उसको बहुत क्रोध आता था, तो उसको एक साइकोथेरेपिस्ट के पास लेके गए, तो उसने क्या कहा उसको कि जब तुमको क्रोध आता है ना, न्यूज़पेपर फाड़ो, जितने न्यूज़पेपर फाड़ सकती हो फाड़ो क्रोध आने पर। तो उसको न्यूज़पेपर दिए जाते थे और वो पूरे रूम में न्यूज़पेपर फाड़ फाड़ के है ना भर देती थी। कोई कहते थे क्रोध आता है ना तो एक तकिया लो और उसको जोर जोर से मारो, पूरा क्रोध उस पे निकालो। लेकिन ये सारी फर्स्ट स्टेजेस है, बहुत जिसको क्रोध आता है उसको, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पे ऐसे कोई है जिसको इतना क्रोध आता हो। तो क्रोध के ही कुछ है, और जैसे महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि क्रोध जैसे कि एक शक्ति है, अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो मैं उसको अपनी, ये मेरा एक अनुभव है, उन्होंने कहा एक कड़वा अनुभव है मेरे जीवन का, या मैंने बहुत बड़ी चीज सीखी अपने लाइफ में कि क्रोध को मैं एक शक्ति में परिवर्तन कर दूं और मैं संसार को हिला दूं उस शक्ति से, इतनी शक्ति है क्रोध में, सोचो। और मोहम्मद प्रॉफिट की एक बात याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि जो जख्म हम अपनी जीभ से देते हैं ना किसी को, वो अपने हाथों से भी नहीं दे सकते। तो एक सच्चा मुस्लिम वो है जो अपनी जीभ और अपने हाथों पर कंट्रोल रखे, अपना संयम रखे। ऐसे कुरान में भी एक जगह पे लिखा है कि जो मुस्लिम अपनी गुस्से पर काबू रखता है उसी को अल्लाह प्यार करता है। तो देखो क्रोध के बारे में तो कितनी जगह पे क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लिटरेचर्स भी है, जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी में कथाओं में लिखा गया है ना कि भगवान भी क्रोधित होते हैं, बस एक मिनट, भगवान भी क्रोधित होते हैं। तो जैसे कि अगर अवज्ञा की या बेमानी की तो क्रोधित होते हैं। बाइबल में भी जगह जगह पे भगवान के गुस्से के बारे में लिखा है और बताया गया है कि ये राइट है। और इस्लाम में 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है और उसमें अल फातिहा करके एक सूरा पढ़ा जाता है और उसमें भी अल्लाह के गुस्से के बारे में लिखा है। तो गुस्सा देखो जैसे कि सर्वव्यापी है, सब जगह लिखा गया है उसके बारे में, कितनी कुछ लिटरेचर है। तो ये आज की क्लास थी हमारी क्रोध के ऊपर और क्रोध मुक्त पर। ओम शांति।